Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
धन्यवाद अर्जुन. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन. पुनीत जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
धन्यवाद सोनू.
और अब हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी.
Prime Minister Narendra Modi addresses a post-budget webinar, says consistency and assurance of reforms have brought new confidence in our industry. US tariffs against China, Canada and Mexico come into effect today. Benchmark domestic indices close marginally down. Sensex loses 96 points. Nifty settles at 22,082. And global crude oil prices decline. Brent crude was at $70.57 per barrel.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित किया. कहा कि सुधारों में स्थिरता और सुनिश्चितता से हमारे उद्योग जगत में नया आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ है. चीन, कनाडा और मेक्सिको पर अमरीका द्वारा लगाए गए शुल्क आज से लागू. प्रमुख बाजार सूचकांक मामूली गिरावट पर हुए बंद. सेंसेक्स 96 अंक गिरा. निफ्टी 22,082 पर हुआ बंद. और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आई गिरावट. ब्रेंट क्रूड $70.57 प्रति बैरल पर था.
इन आवर टॉप स्टोरी, Prime Minister Narendra Modi today said that the government is working with the vision of a self-reliant India and has accelerated the pace of reforms. He said the country has consistently demonstrated its commitment to reforms, financial discipline, transparency and inclusive growth over the past 10 years. Talking about the importance of MSMEs in the economy, Mr. Modi said MSMEs play a transformative role in the economic growth of a country. Mr. Modi was addressing the post-budget webinars held on MSME as an engine of growth, manufacturing exports and nuclear energy emissions, regulatory investment and ease of doing business reforms. The Prime Minister pointed out that stable policy and a good business environment are pivotal for development.
इस बजट की सबसे खास बात रही अपेक्षाओं से अधिक डिलीवरी. कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां एक्सपर्ट्स ने भी जितनी अपेक्षाएं की थी उससे बड़े कदम सरकार ने उठाए और आपने बजट में देखा है. मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को लेकर भी बजट में महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं. साथियों, आज देश एक दशक से भी ज्यादा समय से सरकार की नीतियों में इतनी कंसिस्टेंसी देख रहा है.
Highlighting various measures taken to facilitate the ease of doing business in the country, Mr. Modi said the government implemented the Jan Vishwas Act and introduced the concept of simplified income tax by reducing compliances. He added that the government is working on the Jan Vishwas 2.0 bill. He said important steps have been taken to promote manufacturing and exports in the budget. Mr. Modi said research and development has played a crucial role in India's manufacturing journey and needs further advancement and acceleration. The Prime Minister emphasized the need to develop new modes of credit delivery, ensuring that every MSME has access to low-cost and timely credit. Puneet, the budget has seen a 108% increase in the allocation for the PLI scheme. How important is the MSME in that? We're talking about 19,500 crore rupees, so that we are Atmanirbhar and, more importantly, our dependence on imports keep coming down, key sectors identified, and our fiscal bill, our anything to do with dollar reserves only goes up.
So Arjun, you're right. I mean, we cannot underscore the importance of MSME sector to the Indian economy enough. Because if you look at the overall numbers, almost 30% of the contribution to GDP comes from MSME sector. So that is almost $1 trillion per annum, which is contributed by MSMEs to the GDP. And of course, commensurate with that, we have the contribution to GSTs and other taxes to the economy. Almost 45% to 50% contribution comes to exports. It comes from MSMEs, which is very surprising. You would think that MSME sector is not export-oriented or does not contribute to exports. Almost 50% of contribution to exports comes from MSME. And we have a very large section of population which is employed by the MSMEs. In addition to agriculture, we know that this is the second largest employer of labor. So clearly, the growth of MSME sector not only is an economic necessity for us, it's a social necessity also. And fortunately, what we have seen is over the last 10 years, the government has played a very important role in promoting this sector, strengthening their hands, particularly on three fields. In fact, the PM has covered those aspects in his speech today. First, of course, was the credit delivery to the sector, because there was always this fear that this MSME sector did not have enough access to credit for growth in terms of putting up new plants or buying equipment, etc., training the labor. Secondly, we had the fiscal support. So we had PLI kind of schemes which were providing support, actual direct financial support to the MSME sector. And one major area of concern always for MSMEs was regulatory part, because it was felt that there was this overburdening regulatory framework which held back the growth of MSMEs. And I think government has done a remarkable job in dismantling that in extensive regulatory framework and making emphasizing on ease of doing business. So all these three things put together have given this momentum to MSME sector in India today. And therefore, I highlighted the fact that 50% exports coming from MSME, most people would not be able to comprehend that easily.
So Puneet ji, jaisa aap keh rahe hain ki MSME sector pure desh mein phaila hua hai, grameen kshetron mein bhi, urban areas mein bhi. In fact, uska yahi USP hai ki wo sabko ek mauka deta hai vyavsayik world mein aane ka. To is sandarbh mein aapko lagta hai ki jo digitization itne fast pace pe hamare world, hamari jo country hai usme itna uska jo adoption hua hai, usse sare log sashakt hue hain aur jo MSMEs hain unko bhi iska bahut fayda hua hai, jo hum financial transparency ki baat kar rahe hain, कमिटमेंट टू रिफॉर्म्स, उनके इंप्लीमेंटेशन की या इंक्लूसिव ग्रोथ की, इन सब जो पहलू हैं उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है.
जी बिल्कुल. और अगर आप इसको पूरा, अगर हम इसको टोटलिटी में देखें, तो जैसे मैंने कहा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात है, क्रेडिट डिलीवरी की बात है, तो ये सारा जो सिस्टम इकोसिस्टम है ये एक डिजिटल बैकबोन पर बिल्ड हुआ. तो जैसे क्रेडिट डिलीवरी अब डिजिटल फॉर्म से हो सकती है जो फास्ट और ट्रांसपेरेंट है. जो पेमेंट कलेक्शन है, अगर NPCI की बात करें और हम रुपए क्रेडिट सिस्टम की बात करें, सेटलमेंट सिस्टम की बात करें, तो वो भी एक बहुत इफेक्टिव सिस्टम है. MSMEs के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो गांव में एक उद्योग है वो कैसे पैसे को ट्रांसफर करेगा, उसके बैंक अकाउंट को कैसे ऑपरेट करेगा, उनके लिए बहुत मुश्किल था. हम यहाँ इमेजिन नहीं कर सकते, आपको कई किलोमीटर चलना पड़ता है किसी नई किसी बैंक ब्रांच में जाने के लिए. तो मुझे लगता है कि जो डिजिटल फ्रेमवर्क भी एक एनेबलिंग फैक्टर है. पर मुझे अगेन मैं ये कहूंगा, देखिए इस पूरी व्यवस्था को इमेजिन करना एंड टू पुट ऑल द पीसेस इन प्लेस, दैट वाज रिक्वायर्ड. हम अभी तक क्या था कि एक भावना तो थी कि एमएसएमई सेक्टर को आप बढ़त करिए, उसको ग्रोथ इम्पिटस दीजिए, लेकिन उसके बारे में सोचना कि उसको क्या क्या हमें जरूरी चीजें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी और उससे उसको प्रोत्साहन मिलेगा, वो इफेक्टिव हम देख रहे हैं. तो मुझे लगता है ये पूरा सिस्टम, चाहे डिजिटल पेमेंट सिस्टम की बात करें, चाहे रेगुलेटरी सिस्टम की बात करें, चाहे क्रेडिट सिस्टम की बात करें, ये सारा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था जिससे कि इस सेक्टर को, और मुझे लगता है अभी आने वाले समय में इसको और बढ़ावा मिलेगा. और ये ग्रोथ पोटेंशियल जो है, पर्टिकुलरली हम जो देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का थोड़ा सा माहौल जो है वो कम हो रहा है दुनिया में, और डोमेस्टिक जो बिजनेसेस हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, उनका रोल जो है वो और बढ़ेगा. जो आने वाले प्रोटेक्शनिस्ट हम देख रहे हैं, टैरिफ को लेकर कंसर्न्स हैं ये, तो मुझे लगता है कि MSME सेक्टर जो है वो ऐसी अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है.
So you feel that the industrial ecosystem that has been created, and now we have the Jan Vishwas 2.0 bill again to ease compliances on the part of MSMEs and the ease of doing business, you see that playing a more important role in today's business environment where there's protectionism, where of course tariffs are being raised by the US government? You feel perhaps that we can now target those nations where they are now going to be imposing tariffs reciprocally?
Absolutely, Arjun. So that's why I think this, we have to look at the sector in totality. So and that's why I emphasize the fact that MSMEs contributing 50% to exports. And we can, this can go up because of the tariff barriers coming up and the new global trade mechanism which is going to evolve over the next few years because of the US tariff systems. So I think MSMEs, if they're enabled properly, again, through all the steps that we've talked about, easier ease of doing business, better credit delivery, better collection mechanisms, settlement, international settlement systems. Once this ecosystem is there, I think the Indian MSME sector has the potential to be a major mover in global economy. And particularly, I think, in the emerging market space, because you're going to see these trade blocks come up. No, we're going to see a trade block come up in Europe. We're going to see emergence of new trade blocks because of the new economic realities in the world. And within that reality, I think MSMEs in India have a major role to play.
एक रिविजन हुई क्लासिफिकेशन में बजट में इन्वेस्टमेंट लिमिट को 2.5 गुना बढ़ाया गया है, टर्नओवर लिमिट को 2 गुना बढ़ाया गया है. इससे क्या फायदा होता है, क्या स्केल अप होते हैं एमएसएमईज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा जनरेट होती हैं, थोड़ा ही बता सकते हैं?
तो सोनू देखिए, जब हम एमएसएमईज को डिफाइन करते थे माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को, तो उनको हम टर्नओवर से या इन्वेस्टमेंट से उनको डिफाइन करते थे. और जो इंसेंटिव मिलते थे, जो भी इंसेंटिव मिलना है, क्रेडिट इंसेंटिव मिलना है, वो इस पर आधारित है. अब होता यह है कि जैसे जैसे जो एमएसएमईज हैं वो थोड़े बड़े होते हैं साइज में और वो उस कैटेगराइजेशन से चेंज हो जाता है, तो उनके इंसेंटिव कम होने की वजह से उनकी क्षमता कम हो जाती थी सरकार. और देखिए, इकोनॉमी बढ़ रही है हमारी, तो जो पहले आधार था इस डेफिनेशन का, वो हमें उसको थोड़ा विस्तार देना पड़ेगा. तो ऐसा ही सरकार ने, और यही बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री. वरना आप देखेंगे कि 10 साल पहले या 20 साल पहले जो लॉ बने थे, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं. तो एक बहुत अच्छी चीज है और ये बड़ा जरूरी था इंसेंटिव को डिलीवर करने के लिए.
Let's move on to our next story. The U.S. tariffs on Chinese, Mexican and Canadian imports have come into effect today. U.S. President Donald Trump has announced 25% tariffs against Canada and Mexico and 20% tariffs against China, doubling the levy on China from last month. On the other hand, Canada has said it will retaliate with 25% tariffs on $150 billion worth of U.S. goods. China has announced 10 to 15% tariffs on U.S. agricultural imports and is also targeting U.S. firms with retaliatory actions, while Mexico has also vowed to retaliate. Mr. Trump said the import taxes will force Canada and Mexico to take more action to curb illegal drugs and migrants entering the country. Meanwhile, the U.S. markets dropped and Asian markets turned jittery at the possibility of a trade war. The prospect of a widening trade war has experts warning that American consumers will likely face higher costs for certain products, including groceries, electronics, and automobiles. Puneet, we're seeing the possibility of supply chain disruptions. You mentioned about trading blocks as well. Our earlier story is on MSMEs, manufacturing services. Again, my question earlier was that now do we have to target those nations which are going to impose reciprocal tariffs, and also the free trade agreements that are coming into place with select countries? How important is this type of strategic moves on the part of the government of India to face what's happening on the part of the US?
So, Arjun, we can now see clearly that the global trade landscape is changing dramatically. So earlier, the WTO-driven trade framework that we had, that is not going to be there as effectively as it was there earlier. We are going to see new trade blocks, new trade partners emerging. So two things are important, I think. One, of course, is the importance of domestic market for any country. So India has a large domestic market. So I think that's very positive for us. Along with this, of course, we have to forge new trade deals. We have to forge new trade partnerships. And I think that is where this whole realization that we have to strengthen all our industrial arms in terms of large capacities, in terms of electronic manufacturing, that is happening. And clearly, the way these tariffs are being... See, if you look at China, Mexico, and Mexico, Canada, and USA, so they had something called North American Free Trade Agreement, NAFTA. And that has a trade of about $900 billion a year. So if you're going to have tariffs on that $900 billion of trade, I think it will create a global upheaval in terms of supply chains. So these kind of things happening. Then China, of course, 20% tariffs on $700 billion of exports to America. So this is going to be a very different world.
So Puneet, agar hum abhi thode se jo pehle ke haal tha, abhi kuch samay pehle tak, inflation ek bahut bada kahe ki sankat bana hua tha pure vishv mein. Aur inflation ko fight karna, reserve banks, government, sab uske jo central banks hain, sabhi usme lage hue the. And even US mein jo inflation hai, that was seen as one of the major challenges. Aur ये जो टैरिफ वॉर है, अगर हम एक लेमैन के उससे समझें, तो ये इससे क्या प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन का जो वो प्रॉब्लम थी वो फिर से एग्रीवेट नहीं होगी?
बिल्कुल होगी. और सभी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि जो टैरिफ जो लगाए हैं यूएसए में, उससे करीब करीब $4,000 to $5,000 पर हाउस होल्ड पर एनम करीब करीब खर्चा बढ़ेगा. तो इन्फ्लेशनरी तो जरूर है ये. अगर आप इसको इनकम से मेजर करें तो करीब 2-3% इन्फ्लेशन आ सकता है बिकॉज ऑफ टैरिफ्स विच आर बीइंग इम्पोज्ड इन अमेरिका. तो क्लियरली जो लेकिन ऐसा लगता है जो नीतियां भी अमेरिका की सरकार बना रही है कि इन्फ्लेशन के लिए वो चिंतित नहीं है. फॉर सम रीजन आई डोंट नो व्हाई, आई कांट एक्सप्लेन, बट इन्फ्लेशन को उन्होंने बैक बर्नर पर रखा है. और अभी जो ट्रेड बैरियर्स हैं या जो मेक इन अमेरिका जो उनका एक शायद गोल है, वो उसको ज्यादा अहमियत दे रहे हैं. इन्फ्लेशन को वो अहमियत नहीं दे रहे. लेकिन डेफिनेटली अगर आप स्टॉक मार्केट की तरफ देखें, अमेरिकन स्टॉक मार्केट या दूसरे स्टॉक मार्केट, वो अब अपनी चिंता जता रहे हैं. काफी भारी गिरावट हमने देखी है पिछले 3 दिनों में अमेरिका में. करीब करीब डाउ जोन्स में 150 से 2,000 पॉइंट की गिरावट आई है, 5% की गिरावट आई है, उनकी टेक्नोलॉजी सेक्टर गिरा है. तो डेफिनेटली मार्केट्स वरिड है, हम ये देख सकते हैं. लेकिन अभी देखिए ये प्ले आउट होना है, वी डोंट नो येट व्हाट इज गोइंग टू हैपन.
लेते अगली खबर. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता रोक दी है. व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका शांति पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. वे अपने सहयोगियों से भी इस प्रकार की वचनबद्धता की आशा करते हैं. व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और राष्ट्रपति ट्रंप और उनके डिप्टी के बीच चकित करने वाले सार्वजनिक विवाद के कुछ दिनों बाद यह कदम उठाया गया है. अमेरिका यूक्रेन की सैन्य सहायता का सबसे बड़ा स्रोत रहा है. इसके तहत अमेरिका 3 वर्ष पहले रूस द्वारा विशेष सैन्य अभियान शुरू किए जाने के बाद यूक्रेन को हथियार, अन्य उपकरण और वित्तीय सहायता देता रहा है. सो डिफेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर होता है किसी भी इकोनॉमी का. उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इस खबर को देखें तो क्या लगता है आपको, क्या समीकरण बदलने वाले हैं?
तो शुरू में अभी यही सोच रहा था कि जब आप ये पढ़ रही थी न्यूज की पॉलिटिक्स, इसका पॉलिटिक्स तो देखिए अलग है, हम उसमें ज्यादा भी क्या उसको एनालिसिस करें, बड़े बड़े अभी तो डेवलपिंग स्टोरी है. लेकिन मुझे लगता है कि एक बात साफ है कि जो डिफेंस सेक्टर, डिफेंस इंडस्ट्री है पूरे विश्व में, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो यूरोप में है, चाहे वो इमर्जिंग मार्केट्स में, उसमें बहुत बड़ा फेरबदल आने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव आएगा. और डिफेंस सेक्टर जो है उसकी उसमें डेफिनेटली बहुत बड़ी ग्रोथ आएगी. तो उसको चाहे हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मुझे लगता है कि एक डिफेंस सेक्टर आने वाले समय में एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनकर उभरेगा.
और भारत जो है वो एक्सपोर्ट्स में, डिफेंस एक्सपोर्ट्स में लगातार प्रयास कर रहा है आगे बढ़ने की. सो आपको लगता है हमें इसका, इट डजंट साउंड नाइस बट फायदा होगा?
नहीं, डेफिनेटली फायदा होगा. ये हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन ये मुझे लगता है एक स्पिन ऑफ, एक फायदा जरूर भारत को देगा.
अनदर स्पिन ऑफ विद suspension of military aid to Ukraine. Do you see the sanctions against oil imports from Russia being terminated by the Trump administration? Because we are enjoying a low-cost import of crude oil, which is, of course, beneficial to our bottom line, our fiscal policy. Do you see that happening?
So, of course, that is happening. I think that is on cards. More than that, if you see from day one when President Trump came to power, he made it clear that he wants oil prices to go down. So, all the steps that he has taken are leading to prices going down. And yesterday, I'm sure later on the bulletin we'll read about it. Yesterday, we saw a very sharp drop in crude oil prices worldwide. And clearly, that for India, which imports more than $200 billion of crude oil every year, I think it's a major saving. If prices go down by, let's say, 10%, it saves us more than $20 billion in foreign exchange. So clearly, I think it is it's very positive for us.
Bringing down inflation as well.
It will bring down inflation. It will help in every which way.
So इसलिए आप कह रहे हैं कि अभी balance out होगी situation और हमें पता नहीं है कि next situation क्या रहेगी.
सुनो, इसका ना बहुत सारे moving parts हैं. बड़ा मुश्किल है इसको imagine करना कि ये final picture क्या emerge करेगी. Because ये एक evolving story है. बहुत सारे moving parts हैं. कहीं फायदा है, कहीं नुकसान है. But we will know.
चलिए अब रुक करते हैं शेयर बाजारों का। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी आज मामूली गिरावट पर बंद हुए। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 96 अंक कम होकर 72,989 पर बंद हुआ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 36 अंकों की मामूली गिरावट से 22,082 पर बंद हुआ।
In the Indian stock market today, Sensex and Nifty ended with modest losses. The 30-share index at the BSE, Sensex dropped 96 points to settle at 72,989, and then NSE, Nifty 50 fell marginally by 36 points to settle at 22,082. In the Sensex pack, the top gainers include SBI, which rose over 3%, Zomato increased over 2.4%, and TCS added over 1%. Conversely, among the top laggards, Bajaj Financial Services dipped 2.7%, HCL Tech slipped over 2.4%, and Nestle dropped over 1.7%.
रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 9 पैसे मजबूत होकर 87.27 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 106.28 पर था। थोड़ा सा राहत देने वाले हैं जो स्टॉक्स का प्रदर्शन हुआ है भारतीय बाजार में, बहुत ही मामूली, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, जबकि यूएस में 2025 की सबसे बड़ी गिरावट हुई। सो इसको आप कैसे देखते हैं?
पर सुनो, देखिए मैं आपको बताता हूं, जो आज बाजार में थोड़ी बहुत मामूली गिरावट थी, पर अगर आप देखें तो ये 10वां लगातार 10th कंसेक्यूटिव डे था जब स्टॉक मार्केट में इंडेक्स में हमने गिरावट देखी, और ये पिछले 30 वर्षों में पहली बार हुआ है। 1996 में निफ्टी इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, और 1996 से पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 दिन तक लगातार इस इंडेक्स में गिरावट आई है। अगर हम पिछले सप्ताह महीने को देखें तो 5 महीने लगातार इंडेक्स में गिरावट आई, और वो पहली बार हुआ है पिछले 30 वर्षों में जब 5 महीने तक लगातार इंडेक्स गिरा हो। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में करेक्शन बहुत डीप है, लॉसेस भी काफी हैं, और जैसे हमने चिंताएं जो बातें करी हमने कि भाई ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये सारा एक अपटर्न कर रहा है, एक इसमें बदलाव आ रहा है, तो मार्केट भी इस कंसर्न को रिफ्लेक्ट कर रही है। और मुझे लगता है कि देखिए मार्केट तो ऊपर नीचे होंगी, दैट इज द नेचर ऑफ द मार्केट, दे विल गो अप एंड दे विल गो डाउन, लेकिन इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसका एक पर्सपेक्टिव होना, हम बड़ा, मैं ये कहूंगा कि कॉशियस रहने का टाइम है, इन्वेस्ट करना है हमें लेकिन सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, तो ये एक ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट आर इन अ वेरी वोलेटाइल स्टेट।
पुनीत, I would like to link the tariff story with Nifty IT and metal. IT went down by 1%. We know that TCS and Infosys have weightage in the Sensex and the Nifty 50 when we talk about large cap stocks. So how do you see the IT sector playing out and metal, because these are export oriented sectors? Metal actually went up by 0.4%. We know that tariffs are going to be imposed on aluminium and steel products on March the 12th by the Trump administration. This has gone up, that's gone down. Why, and what does it mean?
So interestingly, we're looking at the data today itself, in fact, or the market data. So metal index is the only index which has actually gone up in last one month. It's gone up by about 2%. So you can understand that the world trade is being reimagined by the markets. They're trying to anticipate what is going to change, what's going to happen. And if you look at the Nifty 50, you know, which is approximately 16% down from the top, the Nifty Next 50, which is, you know, 51 companies to the 100 companies, the next 50 companies.
You're talking mid-cap now.
The main 100 companies, the Nifty, of course, is the top 50 companies, and Nifty Next 50 is the next 50 companies. That index is down by 25%. So you can imagine that as you go down the market cap table, you will find that the losses are deeper. So mid-caps, small caps are losing even more, 35%, 40%. So clearly what we are seeing is that sectorally there is a churning of investments. So sectors which are considered to be very safe until now, IT sector particularly, they have taken a hit. We have seen metal index outperforming, which was not imagined earlier. So clearly I think we are getting affected by what's happening globally. If you look at NASDAQ, that has fallen very sharply. So I think it's all over the place. I like to repeat the fact that there's time to be cautious, one need not be rash, and wait and watch.
आपने बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की बात अभी कही थी, तो बता दें कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डे लॉयन ने आज यूरोप के रक्षा उद्योग को प्रोत्साहन देने और सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए एक योजना प्रस्तुत की। ब्रसल्स में योजना के बारे में यूरोपीय संघ प्रमुख ने कहा कि यूरोप फिर से शस्त्रीकरण के युग में है और अपना रक्षा खर्च बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यूरोप की यह योजना 841 अरब डॉलर से अधिक का रक्षा खर्च जुटा सकती है। यूरोपीय आयोग की प्रमुख की घोषणा सप्ताहांत को लंदन के समिट के बाद 6 मार्च को ईयू के नेताओं की इमरजेंसी मीटिंग से पहले आई है। अमेरिका द्वारा यूक्रेन और उसके यूरोपीय समर्थक देशों से समर्थन हटाने की संभावना समेत अमेरिका की बदलती प्राथमिकताओं का यूरोप सामना कर रही है। सो जो फॉर्मर एलाइज थे लगता है कि अब वो आमने सामने हैं। आपको लगता है कि हमारा दोनों से द्विपक्षीय जो है हमारे ट्रेड रिलेशंस वो बने रहेंगे?
देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग ये एक आयाम है, डायमेंशन है इंटरनेशनल रिलेशंस की, कि भारत एक ऐसा बड़ी अर्थव्यवस्था है जो जिसका कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है। तो हमने अभी ट्रेड एग्रीमेंट करा, एक तरह से ट्रेड अंडरस्टैंडिंग करी यूरोप के साथ। हम प्रधानमंत्री अमेरिका भी गए, वहां भी उनका एक बड़ा कॉर्डियल मीटिंग रही। तो मुझे लगता है कि भारत एक अपने आप को पोजिशन कर रहा है एक बड़े इस डिफिकल्ट वर्ल्ड में टू बी इन एडवांटेजियस पोजिशन। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट, बट लुक्स पॉजिटिव फॉर नाउ।
रुख करें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। अधिकांश प्रमुख एशियाई बाजारों में आज मंदी का रुख था। जापान का निकेई सूचकांक 1.2% की तीव्र गिरावट में रहा। हांगकांग के हैंगसेंग में 0.3% की गिरावट आई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.1% के नुकसान में रहा और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.4% की गिरावट आई। हालांकि चीन की बात करें तो निवेशकों ने अमेरिका और चाइना के बीच एक नए व्यापार मतभेद को नजरअंदाज कर दिया और इसकी जगह बीजिंग की नीतियों की दिशा का आकलन करने के लिए अपना ध्यान आगामी वार्षिक संसद सत्रों पर केंद्रित कर दिया और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.2% की बढ़त में रहा। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां भी गिरावट का रुख था। जर्मनी का डैक्स 2%, फ्रांस के कैक 1.4% और ब्रिटेन का फुटसी 0.3% के नुकसान में थे।
Moving on to the US stock market, US stocks declined yesterday with the S&P 500 posting its biggest daily percentage decline since December 18. The S&P 500 lost 105 points or 1.8% to 5,850. The Dow Jones Industrial Average fell 650 points or 1.5% to 43,191. And the Nasdaq Composite lost 497 points or 2.6% to 18,350. Energy and tech sectors led declines with most mega cap growth sectors ending down, including chip giant Nvidia, which is down 8.7%. Amazon closed down 3.4%. Recent reports of softening consumer demand have spurred fears of an economic slowdown and higher inflation. Again, inflation is something that Sonu Sue that brought up with you earlier as well. But, you know, insourcing key goods, components, equipment from China, who are seen as a hub for outsourced manufacturing. How is this going to affect the US market in the short to medium term as well, even though all the stock exchanges have suffered losses right now? Will that continue? And what about the large cap stocks who depend upon China to sell their product and to import as well?
So we know that we have built an interconnected world over the last two, three decades. But of course, what we are seeing now is, and American markets were really bullish. There was this concept of American exceptionalism. But clearly that confidence is beginning to crack. We are seeing a decline in stock indices, and markets are going to wait and watch. By one estimate, American economy could actually contract in the first quarter of this year. This is one estimate by Goldman Sachs, but we are yet to see whether the economy really reacts that badly. We already know the consumer demand is a bit down, but again, you need to wait and watch.
Let's have a look at the crude oil market. Global crude oil prices declined today following reports that OPEC Plus will proceed with a planned output increase in April. Brent crude oil futures declined over $1 or 1.5% to $70.57 a barrel. US crude dipped 86 cents or 1.3% at $67.51 a barrel.
सराफा बाजार में सोना अंतिम समाचार मिलने तक 24 कैरेट सोना 0.96% बढ़कर 86,510 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी 0.58% बढ़कर 96,660 रुपये प्रति किलो पर थी। आपसे जानना चाहेंगे, सोने का आपको लगता है कि जो हाई लेवल्स हैं वो बने रहेंगे जितना टर्मोइल बढ़ता जा रहा है इंटरनेशनल?
डेफिनेटली, देखिए सोने में थोड़ी करेक्शन पीछे आई थी, लेकिन दोबारा से कल हमने तेजी देखी, आज भी हम तेजी देख रहे हैं सोने में। मुझे लगता है जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है उसमें सोने में हम तेजी देखेंगे, तो मजबूती मुझे लगता है बनी रहेगी।
समय समाप्त हो रहा है, सो हमें चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा। पुनीत जी, आप आए, आपने हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses post-budget webinars, says consistency and assurance of reforms have brought new confidence in our industry. US tariffs against China, Canada and Mexico come into effect today. Benchmark domestic indices close marginally down. Sensex loses 96 points. Nifty settles at 22,082. And global crude oil prices decline. Brent crude was at $70.57 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.